होलिस्टिक हीलिंग में, एनर्जी हीलिंग में भी कई बार कुछ ऐसी चोट रहती है अपने अंदर उस जन्म की, उसको हील करने पर वो जो हीली होता है, जो रोगी होता है, वो कभी कभी रोता है और कभी कभी ऐसे छटपटाता है, कभी कभी चिल्ला भी देता है वो। इसलिए उसको एकांत कक्ष में हीलिंग देना पड़ती है, नहीं तो फिर उसकी चिल्लाहट सुन करके उसके परिवार बोलेंगे डॉक्टर साहब क्या कर रहे हो आप, मारोगे क्या? वैसा नहीं है कुछ। उसकी हीलिंग के लिए उसको सब अंदर की जो पुरानी वेदनाएं हैं उससे मुक्त कराना पड़ता है, और जब वो बिल्कुल मुक्त हो जाता है, हीलिंग सेशंस पूरे कंप्लीट हो जाते हैं, तब वो एक स्वस्थ इंसान बन जाता है, और इतना स्वस्थ कि फिर वो चीज़ उसके स्मृति में होगी लेकिन उससे जुड़ी हुई वेदना से वो मुक्त होगा। बहुत बड़ी बात है। याद रहना और याददाश्त के साथ उसकी पीड़ा रहना, इन दोनों में बड़ा अंतर है। जैसे उदाहरण के लिए किसी के साथ आपका झगड़ा हो गया और बाद में समझौता हो गया, और समझौता होने के बाद में आप लोग बहुत अच्छे से प्रेम से मिल गए, अब वो झगड़ा आपको याद तो हो सकता है लेकिन उसकी पीड़ा नहीं होगी, क्योंकि आप इतने मिल चुके हैं, अब इतना स्नेह हो गया एक दूसरे से कि अब आपको उसकी पीड़ा नहीं रह गई। इसी प्रकार एनर्जी के द्वारा उसको हीलिंग्स जो देते हैं, उसको वो स्नेह वात्सल्य प्रदान किया जाता है कि वो पुरानी वेदना को तो भूल जाता है लेकिन पुरानी स्मृतियां उसकी बुद्धि में रह जाए तो रह जाए। तो ऐसे कई जन्मों से जीव भटकता हुआ चलाया आज यहाँ पर धनलक्ष्मी सोसाइटी में, इस शांतिनाथ भगवान जी के मंदिर में बैठ करके छह डाला का श्रवण कर रहा है कि नहीं? अपना जीव, अपन अपने अपने जीव के बारे में बात कर रहे हैं कि यहां पर बैठ करके ये धर्म श्रवण हो रहा है। तो सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में जो कारण है उनमें से चार कारण आपने लिख लिए, बोलिए जरा कौन से चार कारण? धर्म श्रवण, फिर जिन बिंब दर्शन, जाति स्मरण, वेदनानुभव, और इसके बाद देव गति से संबंध रखने वाले दो कारण और है। एक है देवर्धि दर्शन, देव रिद्धि दर्शन, उसको संधि कर लोगे तो देवर्धि दर्शन। बड़े देवों की रिद्धि यानी वैभव को देखकर छोटे देव विचार करते हैं कि इसको ऐसा वैभव क्यों मिला, तो पता चलता है कि इसने पूर्व भव में सम्यक धर्म का आचरण किया, पालन किया। मुझे क्यों नहीं मिला? क्योंकि मैंने उस धर्म को ठुकराया। आज मुझे पता चला कि सच्चा धर्म वही है, इसलिए आज मैं उस धर्म के प्रति श्रद्धा करता हूँ। धर्म के प्रति श्रद्धा करता है तो धर्म के विषयभूत जो तत्व हैं उनको भी अपनी श्रद्धा में, आस्था में स्वीकार करता है, और तब वो सम्यक दृष्टि बन जाता है। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तो ये देवर्धि दर्शन एक कारण, और दूसरा एक और कारण है जिन महिम दर्शन, जिन महिम दर्शन। जिन महिम दर्शन का अर्थ होता है तीर्थन करके पंच कल्याणकों का दर्शन होने पर भी मिथ्या दृष्टि देव सम्यक दृष्टि बन जाते। जब वो ये विचार करते हैं कि सारी प्रजा राजा के चरणों में झुकती है और बड़े बड़े राजा देवताओं के सामने झुकते हैं और बड़े बड़े देवता इंद्र के सामने झुकते हैं और बड़े बड़े इंद्र जिनेंद्र के चरणों में झुकते हैं, तो जिनेंद्र में ऐसी क्या विशेषता है? जब जिनेंद्र की विशेषता को जानने के लिए उनका ज्ञान झुकता है, उत्कंठित होता है, और जैसे ही उनको परिचय होता है कि ये वो भगवान है, ये वो तीर्थंकर है जिन्होंने उस जन्म में 16 कारण भावनाएं भाई है, और जो इसी जन्म में केवल ज्ञान को प्रकट करने वाले हैं, जब वो तीर्थंकर के बारे में, केवली भगवान के बारे में विचार करते हैं, उनके गुणों का ध्यान करते हैं, तब उनका मिथ्यात्व नष्ट हो जाता है और वो भी सम्यक दृष्टि बन जाते हैं। ऐसे 6 कारण है सम्यक दर्शन प्राप्त करने के। तो केवली भगवान सकल द्रव्य के गुण अनंत, पर जाय अनंता, जाने एक एक काल, एक ही काल में जान लेते हैं। अब लेकिन केवली भगवान के इस केवल ज्ञान का अपन बहाना ना बनाए, जैसे कोई रात्रि भोजन नहीं छोड़ रहा, उसको 6-7 बार समझा लिया फिर भी नहीं छोड़ रहा, अंत में बोलता है कि कि अभी केवली भगवान के केवल ज्ञान में मेरे रात्रि भोजन छोड़ने का वक्त नहीं है। देखो ये एक बहानेबाजी है, कौन जानता है कि केवली भगवान के केवल ज्ञान में क्या है क्या नहीं है? तुम्हें पता है क्या? अगर तुमको केवली भगवान का केवल ज्ञान समझ में आ जाए तो फिर तुम ही केवली भगवान बन जाओ। केवल ज्ञान के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी तो अपने को हो सकती है, जैसे यहां पर दो पंक्ति में बताए ना, लेकिन इससे ज्यादा अपन जान सकते हैं क्या केवल ज्ञान को? केवल ज्ञान इतना विशाल है, इतना विशाल कि उसकी बराबरी और कोई के साथ नहीं होती। ऐसे ज्ञान के धारी अपने आराध्य देव हैं, परमात्मा हैं। इसलिए कितने बड़े सौभाग्य की बात है कि अपन जिनको परमात्मा मान रहे हैं संसार में, वो इतने उत्कृष्ट हैं कि उनकी कोई तुलना नहीं है। इतने महान परमात्मा है जो अपने श्रद्धेय हैं। ऐसे केवली भगवान केवल ज्ञान के धारी होते हैं। केवल ज्ञान सम्यक ज्ञान का अंतिम भेद है, और इसलिए केवल ज्ञान आराध्य है, पूज्य है और प्राप्त करने योग्य भी है। और फिर तीसरे छंद की अंतिम दो पंक्तियों में कहा कि ज्ञान के समान जगत में सुख का कोई अन्य कारण नहीं है। और वही बात प्रवचन सार में कही है कि जब तक अपना ज्ञान अधूरा है, अधूरा ज्ञान खतरे जान। अगर डॉक्टर को सही जानकारी न हो रोग के बारे में तो भलतीज दवाई दे दे, और मरीज की तो फिर पता नहीं क्या दशा हो। अधूरा ज्ञान खतरे जान, ये स्थिति अपनी है। अपन अशांति को क्यों प्राप्त कर रहे हैं? अपना मन दुखी क्यों होता है? बार बार आकुल व्याकुल क्यों हो जाता है? पूर्ण ज्ञान न होने के कारण। पूर्ण ज्ञान हो जाए फिर आकुलता की कोई बात ही नहीं है, लेकिन पूर्ण ज्ञान होने के पहले मोह का नाश आवश्यक होता है। मोह क्षयात ज्ञान दर्शनावरण अंतराय क्षयात च केवलम। मोह का नाश पहले आवश्यक है, क्योंकि मोह के साथ अगर ज्यादा ज्ञान हो जाए तो फिर और मुसीबत हो जाए। मोही जीव का ज्ञान आकुलता ही बढ़ाएगा। वैसे साइंस के हिसाब से एक बात आती है कि अगर पुरुष ज्यादा पढ़ ले तो उसकी नींद कम हो जाती है, और अगर कोई बहन या माता अधिक पढ़ ले तो उसकी नींद बढ़ जाती है। अब क्या कारण है पता नहीं, ऐसा साइंस में आता है। केवली भगवान जो होते हैं उनके पास मोह भी नहीं होता, उनके पास बल भी अनंत होता है और ज्ञान भी इतना होता है कि वो सब कुछ जानते हैं। अब इसमें यह नहीं कहना कि केवल ज्ञान की इतनी क्षमता है कि वो तीनों लोक को जानता है। माने केवल ज्ञान की क्षमता की यहां पर चर्चा नहीं करना। ये तो तीन लोक है इसलिए तीन लोक को जानता है। तीन लोक से ज्यादा कुछ होता तो भी जानता, उससे ज्यादा होता तो भी जानता। तो फिर केवल ज्ञान की क्षमता क्या तीन लोक की हुई? नहीं हुई। केवल ज्ञान तीन लोक को जानता है मात्र इतना कहना उचित है, लेकिन तीन लोक को जान सकता है ये गलत बात है। केवल ज्ञान में जान सकने की अगर बात करोगे तो फिर परमात्म प्रकाश के मंगलाचरण में एक बात लिखी हुई है। क्या लिखे हैं? कि केवल ज्ञान आकाश के समान विशाल है, और ये त्रिलोक है, तीन लोक, त्रिलोक ब्रह्मचारी जी नहीं, तीन लोक जो है ये त्रिलोक एक टिमटिमाते हुए तारा के समान है। मतलब केवल ज्ञान इतना विशाल है कि उसमें तीन लोक एक छोटे से तारे के समान, जैसे आकाश इतना विशाल है कि उसमें तारा टिमटिमाता रहता है, वैसे ही केवल ज्ञान इतना विशाल है कि उसमें इतना सा छोटा सा तीन लोक। अब तीन लोक अपने ज्ञान के हिसाब से देखो तो फिर इतना बड़ा है कि अपन जान ही नहीं सकते इस जन्म में। तो केवली क्या? केवल ज्ञान इतना विशाल है। तो ज्ञान के समान अन्य कोई सुख का कारण जगत में नहीं है, यही परम अमृत है, और यही ज्ञान जन्म जरा और मृत्यु रोग का निवारण करने वाला है। और ज्ञान के बिना करोड़ों जन्मों तक तप तपने पर भी जो कर्मों की निर्जरा होगी, ज्ञानी मुनि अगर शुद्धोपयोग में लीन हो जाए, निर्विकल्प समाधि में चले जाए, तो एक क्षण में, एक उच्छ्वास मात्र में उतने ही कर्मों का नाश कर डालते हैं। उच्छ्वास का अर्थ क्या होता है? सांस अंदर लेना या बाहर लेना, उच्छ्वास का अर्थ क्या है? दोनों है? नहीं, दोनों तो उच्छ्वास निश्वास को कहते हैं, उच्छ्वास और निश्वास, इन दोनों को साथ में जोड़ दो, उच्छ्वास निश्वास, तब दोनों आते हैं। अकेले उच्छ्वास का क्या अर्थ है? अंदर लेने वाले कितने लोग हैं? अब मुसीबत है सब लोग, मतलब क्या है कि जहां पर इज्जत का सवाल अपना गलत निकल गया, तो कोई ऐसी घबराने की बात नहीं। देवशास्त्र गुरु के सामने अगर गलती हो जाए तो सुधरेगी, उसमें आपकी मान हानि वाली बात नहीं है। तो शास्त्रों के अनुसार अपन देखें तो उच्छ्वास का अर्थ होता है श्वास को बाहर छोड़ना। आप बहुत खुश हो गए आप है? जो लोग निश्वास का अर्थ होता है श्वास भीतर लेना, उच्छ्वास का अर्थ छोड़ना। और मेडिकल साइंस के अनुसार एक नॉर्मल मनुष्य 3 सेकंड्स में सांस बाहर छोड़ता है। आप अगर जल्दी छोड़ते हो तो पता नहीं, लेकिन अंदर लेने में 2 सेकंड्स लगते हैं, बाहर छोड़ने में 3 सेकंड्स लगते हैं। टक टक टक, ऐसे 3 सेकंड्स में सांस बाहर निकलती है। तो ज्ञानी जीव एक क्षण में, एक उच्छ्वास में उतने कर्मों को नष्ट कर डालते हैं जो करोड़ों जन्मों में तप करके अज्ञानी जीव खपाता है। और ज्ञान के बिना, अगर आत्मा को पहचाने के बिना, तत्वार्थ श्रद्धान के बिना कोई दीक्षा ले ले, तो दीक्षा लेकर वो अनंतों बार ग्रेवेक को प्राप्त हो सकता है, पर सच्चा आत्मिक सुख नहीं प्राप्त कर सकता। और सब जीवों ने ये काम किया हुआ है, जो भी पंच परिवर्तन में भटके हुए जीव हैं उन सब ने ये कार्य किया। जो अभी तक निगोद से नहीं निकले वो नहीं गए हैं ग्रेवेक। ठीक है, ग्रेवेक कैसे जाएंगे वो, क्योंकि ग्रेवेक तो मनुष्य गति से ही प्राप्त होने वाला है, और मनुष्य गति में भी कम से कम मुद्रा मुनि की होना अनिवार्य है। अब कल श्रुत पंचमी का महान पर्व है, जैन शास्त्रों का पर्व, तो उसकी कथा आप सुनेंगे। आज यहाँ पर ज्ञान की आराधना का जो प्रकरण था वो पूर्ण हुआ, इसके आगे सम्यक् ज्ञानी होय बहुरी दृढ़ चारित लीजे, एक देश अरु सकल देश तसु भेद कही जे, त्रस हिंसा को त्याग वृथा सावर न संघारे, पर बधकार कठोर निंदे नहीं बचन उचारे, अब सम्यक ज्ञान के बाद सम्यक चरित्र का वर्णन प्रारंभ होता है। सम्यक ज्ञानी होकर बहुरी, फिर दृढ़ चारित्र लीजिए। दृढ़ चारित्र को ले लेना चाहिए, यानी दृढ़ चारित्र अंगीकार करना है। तसु भेद, उस चारित्र के भेद, एक देश और उस सकल देश कहिजे, एक देश चारित्र और सकल देश चारित्र, ऐसे दो भेद कहे जाते हैं, यानी इसको विकल चारित्र और सकल चारित्र इन नामों से भी जाना जाता है। देश संयम और सकल संयम भी इसी को कहते हैं। और इसमें 5 व्रतों की बात कर रहे हैं। पहले देश व्रतों का वर्णन करते हुए, त्रस हिंसा को त्याग। त्रस, त्रस जीव कौन होते हैं? दुर्लभ लही जो चिंतामणि, त्यों पर्याय लही त्रस तणी। त्रस का अर्थ होता है द्विन्द्रियादय त्रसाहा। तत्वार्थ सूत्र के 2 अध्याय में आया है कि 2 इंद्रिय को आदि लेकर जितने जीव हैं वे त्रस जीव कहलाते हैं। फिर शंका ये उठेगी कि 2 इंद्रिय को आदि लेकर कितने जीव होते हैं? 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, 6 इंद्रिय, 7 इंद्रिय, ऐसे कितनी सीमा है वहाँ? तो बोले पंचेंद्रियाणी, इंद्रियां 5 ही होती है, इसलिए 2 इंद्रिय से पंचेंद्रिय वाले जितने जीव हैं उनको त्रस जीव कहते हैं। तो त्रस हिंसा को त्याग, त्रस हिंसा का त्याग, और वृथा थावर न संघारे, व्यर्थ में स्थावर हिंसा का भी त्याग, व्यर्थ में स्थावर जीवों का संहार नहीं करते। तो ये अहिंसाणु व्रत हो गया। अब देखो गृहस्थों के जो व्रत है उनका वर्णन करते हुए बोल रहे हैं कि व्यर्थ में दो इंद्रिय आदि प्राणियों का घात नहीं करना, उसका नहीं, व्यर्थ में तो स्थावर का और दो इंद्रिय आदि को का तो घात करना ही नहीं, त्रस हिंसा का तो त्याग है। और इस त्याग का स्पष्टीकरण लेकिन थोड़ा सा अपने को समझना है। जैसे मान लो कोई चोर अपने घर में घुस गया और ऐसी स्थिति आ गई कि जब तक अपन प्रहार नहीं करते तब तक बड़ी भारी हानि संभावित होती है, तो क्या करना, प्रहार करेंगे कि नहीं? वो त्रस त्रस जीव है, वो चोर तो बिल्कुल पंचेंद्रीय सैनी पंचेंद्रीय मनुष्य पर्याय का आर्यखंड का प्राणी है वो। तो इसलिए ये जानकारी यहां पर और समझ लेना चाहिए। इसमें ये बताया ना त्रस हिंसा को त्याग, जैसे हमने उस पिछले काव्य में बताया था पुण्य पाप फल माही हरक बिल्कुल मत, एक दृष्टांत है कि इसमें पुण्य के फल में हर्षित नहीं होना, पाप के फल में बिलखना नहीं। अब इसमें अपेक्षा लगाए बिना अर्थ करोगे तो क्या निकलेगा? पुण्य का फल है देवशास्त्र गुरु की उपलब्धि, तो उसमें हर्षित नहीं होना। और पाप का फल क्या है? पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर उपसर्ग आ गया अथवा और किसी साधु के ऊपर या धर्मायतनों के ऊपर कोई संकट आ जाए, तो ये सब पाप के ही फल से तो होते हैं ऐसे अनिष्ट, तो इसमें अपने को बिलखना नहीं है, ये अर्थ है। नहीं, इसके पीछे वाली लाइन देखो आप, क्या है कि जब तक अपन कॉन्टेक्स्ट नहीं देखते तब तक ऊट पटांग अर्थ निकलते हैं। एक लाइन का अर्थ निकालो तो कहीं से कहीं भटकोगे। जैसे अहिंसा के बारे में पहले एक बार चर्चा हुई थी, आपको याद हो, संलेखना का सूत्र हमने यहां खोल करके दिखाया था, तब उसमें क्या निकला था कि रागादिक की उत्पत्ति ही हिंसा है। अब रागादिक की उत्पत्ति दसवें गुण स्थान में भी है, पर दसवें गुण स्थान में वो रागादिक की उत्पत्ति हिंसा है क्या? नहीं। फिर हिंसा कौन सा राग है? अप्रशस्त राग। फिर राग के किसी भी आवेश को उन्होंने उस रूप कहा है। प्रशस्त राग का आवेश भी विरोधी हिंसा करा सकता है, नहीं करा सकता? देखो आपको आयतन जिनेंद्र भगवान के प्रति प्रशस्त राग है, और अगर कोई आकर के कुछ उपद्रव मचाता है तो फिर आप विरोध करेंगे कि नहीं? तो फिर वो किस निमित्त से हो रहा है विरोध? प्रशस्त राग है ना। तो यहां पर तात्पर्य इसका ये समझो कि जो आवेश रूप रागादिक, उसमें क्या अकेले राग की बात नहीं है, हिंसा जो है वो द्वेष भी उसमें सम्मिलित होता है, काम क्रोध आदि सब आ जाते हैं, जो भी विकारी भाव है उनके सबके आवेश को वहां पर हिंसा कहा गया। इसी प्रकार यहां प्रकरण देख लीजिए आप कि ऊपर वाली पंक्ति में क्या लिखा है कि विषय चाह, विषयों की जो चाह है वो दवदाह जंगल की आग है, और जगत जन अरणि, और संसार के जो प्राणी है वो क्या है? वन है। उस वन को ये विषयों की चाह रूपी अग्नि जलाती है, और उसको ज्ञान रूपी मेघ ही बुझा सकते हैं और कोई नहीं बुझा सकता। अभव्य जीव मुनि पद धारण करके भी धम्मम भोग निमित्तम, संसार के सुख का ही कारण मानता है धर्म को, क्योंकि उसको मोक्ष सुख की जाति पता नहीं है। वो वास्तव में इसमें क्या फर्क होता होगा, क्योंकि अभव्य ने भी पढ़े हैं 11 अंग, और वो भी जानता है कि भाई मुनि पद से रत्नत्रय धारण करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, पर वो ये नहीं जानता कि मेरे अंदर रत्नत्रय है या नहीं है। पर उसके अंदर जो सुख के प्रति जो धारणा है मान्यता, वो क्या है? भोग निमित्तम। भोग निमित्तम का अर्थ क्या है कि जैसे संसार में इतने अच्छे अच्छे सुख जो लौकिक दृष्टि से इंद्रिय जगत की अपेक्षा से हैं, देवगति में है, तो मोक्ष का सुख इससे अनंत गुना है। तो अनंत गुना है, तो उसकी धारणा क्या होती है कि सुख तो यही है लेकिन इससे क्वांटिटी ज्यादा मानता है मोक्ष सुख की, लेकिन क्वालिटी अलग है ये नहीं समझता। आ रहा समझ? नहीं तो अब मिथ्यात्व का उदय है तो फिर क्या करोगे? और स्थायी उदय है, नित्य उदय है मिथ्यात्व का अभव्य जीव में, तो क्या कर सकते? मिथ्या दृष्टि जीव को जिनवाणी न सुहाए, के उंगे के लर परे, के उठ घर को जाए। उसकी बात तो ठीक है, वो मंद कषाय अनंत, देखो उसकी बात ऐसी है कि उसके मंद कषाय होने के कारण अनंतानुबंधी के इतने मंद कषाय है कि वो ये सब कर ले रहा है, लेकिन बस श्रद्धा उसकी नहीं बदल सकती, औदयिक भाव है। होती है ना, उसमें अणुव्रत भंग नहीं होता। घर गृहस्थी में जो हिंसा हो रही है तो उसमें अणुव्रतों में ये बतलाया है, रत्नकंठ श्राव का चरपन देखो, आचार्यों के वचन लेकर चले तो फिर सीधा समाधान निकलता है। संकल्पात कृत कारित मननाद योगत्रयस्य चर सत्वान न हिनस्ति। क्या कहा कि संकल्प पूर्वक चर सत्वान, चर सत्व चर जीव किसको कहते हैं? चर याने त्रस और अचर याने स्थावर, ये भी एक दूसरे नाम है, आप इसका ख्याल रखिएगा ये पर्यायवाची शब्द के रूप में, चर याने त्रस और अचर याने स्थावर। तो चर जीवों को त्रस जीवों को वो संकल्प पूर्वक नहीं मारता, नहीं नस्ती। और कैसे नहीं मारता? कृत कारित अनुमोदन और मन वचन काय से। कहने का मतलब ये हुआ कि वो अभिप्राय पूर्वक इरादे के साथ किसी भी त्रस जीव का घात नहीं करता। इरादे का मतलब क्या है कि मैं इसका घात करूं इस इरादे से। अब घात अगर हो जाए, विरोधी हिंसा में भी घात तो होता है, जैसे राम रावण युद्ध हुआ तो उसमें तो कितने जीवों का घात हो गया, कितने मनुष्य मारे गए, कितने विद्याधर परलोक चले गए। तो उसमें क्या था कि उसमें यह उद्देश्य नहीं था कि भाई इसको मारना है इसलिए हम मारे, उसमें युद्ध की परिस्थिति ऐसी बन गई थी कि अब लड़ना ही पड़ेगा। इसी प्रकार देश के ऊपर कभी संकट आता है तो उसमें जैन व्यक्ति को फौजी बनना चाहिए कि नहीं, या जैन व्यक्ति अगर फौजी होता है तो उचित है कि अनुचित है? अनुचित है, उचित है। किन्ने इसी प्रकार सुपार्श्वनाथ भगवान के चरित्र में उत्तर पुराण के अंतर्गत एक श्लोक आता है, स्वायुराद्यष्ट वर्षेभ्य सर्वेषां परतो भवेत् उदिताष्ट कषायाणां तीर्थेषां देश संयमः। अपनी आयु के 8 वर्ष पूर्ण होने पर सर्वेषां तीर्थेषां सब तीर्थंकरों के उदिताष्ट कषायाणां, 8 ही कषाय उदय में रहती है तो देश संयमः भवति, उनको देश संयम हो जाता है। मैंने 8 साल के कोई भी तीर्थंकर होंगे तो वो 5वें गुण स्थान में चले जाएंगे। अब शांतिनाथ भगवान ने जो दिग्विजय की थी, चक्रवर्ती पद प्राप्त किया था, वो 50,000 वर्ष की उम्र में किया था दिग्विजय, उन्होंने 50,000 वर्ष की उम्र में की थी। तो उस समय देश संयम तो रहा ही था उनके पास, तो देश संयम होते हुए भी उन्होंने कितने 5 म्लेच्छखंडों को जीता है, पूरी सेना के साथ निकले हैं। तो ये सब संभव है, जब तक आरंभ त्याग प्रतिमा धारण नहीं कर लेते तब तक के ये जो आरंभ है, राजा का आरंभ उसके योग्य होता है, व्यापारी का आरंभ व्यापारी के योग्य होता है, खेती किसानी करने वाले का आरंभ उसके योग्य होता है। आरंभ का मतलब क्या है? आजीविका। आजीविका का जो साधन होता है वो आरंभ कहलाता है। तो उनका जीवन राजा का वैसा ही जीवन है कि उसको जीतना ही पड़ता है, अड़ोस पड़ोस के और फिर सब जितने साम्राज्यों को वो जीत सकता है वहां तक। तो इसलिए वो आरंभ के त्यागी नहीं थे, लेकिन व्रती अवश्य थे। देश संयम, सर्वेशम देश संयम भवेत। श्लोक कितना स्पष्ट है, स्वायुराद्यष्ट वर्षेभ्य परतः, अपनी आयु के 8 वर्ष से परतः यानी आगे, सर्वेशम तीर्थेशम सब तीर्थंकरों के, उदिताष्ट कषायाणाम 8 कषायों का उदय है जिनको, ऐसे सब तीर्थंकरों के देश संयम, देश संयम होता है। देश संयम का अर्थ वो अब असंयम ही नहीं रहते। तीर्थंकर भगवान 4th गुणस्थान में नहीं होते, 8 वर्ष तक 4th गुणस्थान में, क्योंकि 8 वर्ष तक मनुष्य पर्याय में असंयम ही रहता है, ये नियम है। तो वो देश संयम कौन सा गुणस्थान है? 5वां गुणस्थान है। तो इसलिए त्रस हिंसा को त्याग, ये जो पंक्ति है ना, इसका भी अपने को तात्पर्य समझना चाहिए, क्योंकि छेड़ाला का अगर आप सिर्फ शब्दार्थ पकड़ करके खींचातानी करोगे तो फिर इसका भाव नहीं समझ में आने वाला। इसीलिए छेड़ाला ग्रंथ भी अपने मनमाने ढंग से पढ़ने योग्य नहीं है। इसको कम से कम एक बार किसी अनुभवी और ज्ञानी के साथ में अध्ययन करने योग्य। तो एक त्रस हिंसा को त्याग, कौन सा त्याग है त्रस हिंसा का? तो संकल्पात कृत कारित, मन वचन का है कृत कारित अनुमोदना से संकल्प हिंसा का त्याग है। त्रस जीवों से संबंध रखने वाली स्थावर जीवों की संकल्प हिंसा का त्याग नहीं है अभी। स्थावर जीवों की संकल्प हिंसा का त्याग नहीं है, और वृथा थावर न संगार, लेकिन व्यर्थ में स्थावर जीवों का घात नहीं, जो व्यर्थ में नहीं करेगा क्यों? उसमें आगे अनर्थ दंड भी व्रत आने वाला है, तो उसमें अनर्थ दंड व्रत में भी ये सब चर्चाएं आती है। और सत्य व्रत के अंतर्गत गृहस्थ का क्या कर्तव्य है तो बताते हैं, परवधकार कठोर, दूसरों का वध हो जाए अथवा जो अपने आप में कठोर हो ऐसे वचन, और निंदे वचन हो। निंदे वचन का अर्थ क्या होता है? कि जो सभ्य भाषा में नहीं गिने जाते ऐसे वचन, अश्लील भाषा, अभद्र वचन, गाली गलौज, ये सब निंदे वचनों के अंतर्गत आते हैं। नहीं वचन उच्चार, ऐसे वचनों का उच्चारण वह नहीं करता। सत्य व्रत अंगीकार करने वाला ऐसे वचनों का उच्चारण नहीं करता। ये 5 अणुव्रत तो अभ्यास रूप में सबको करते रहना चाहिए, क्योंकि इससे अपन दुर्गति से बच सकते हैं। नहीं तो आप सर्वथा असंयमी रहोगे तो फिर क्या भरोसा, अपने अंदर मिथ्या दर्शन है या कौन सी कषाय उदय में है किसको मालूम है। इसलिए इनका अभ्यास तो रखना ही चाहिए जीवन में, और अभ्यास की जो भावना है वो आपकी लेश्याओं को विशुद्ध बनाएगी, और लेश्याओं की विशुद्धि से दुर्गति नहीं होगी। इतना तो कम से कम अपने लिए हितकर है। तो त्रस जीवों की संकल्प हिंसा का त्याग और व्यर्थ में स्थावर जीवों का घात वह अहिंसा व्रती नहीं करेगा गृहस्थ जीवन में। और सत्य व्रत धारण करने पर दूसरों का वध कराने वाले वचन नहीं बोलेगा, कठोर वचन नहीं बोलेगा और निंदे वचन नहीं बोलेगा। जल मृतिका बिन और ना ही कछु गहे अदत्ता, निज वनिता बिन सकल नारी सो रहे विरत्ता। अपनी शक्ति विचार परिग्रह थोरो राखे, दश दिश गमन प्रमाण ठान तसु सीमन नाखे। पानी मिट्टी इनको छोड़ करके बिना दी हुई किसी की कोई वस्तु ग्रहण नहीं करता, ये अचौर्य व्रत हो गया। बिना दी हुई वस्तु को ग्रहण करना चोरी है। तो पानी मिट्टी के बिना बिना दी हुई किसी की वस्तु को ग्रहण नहीं करता। और कदाचित पानी और मिट्टी पर भी किसी का स्वामित्व हो और कहीं ऐसी आपत्तिजनक स्थिति हो तो उसको भी बिना पूछे नहीं लेगा। जैसे मान लो कहीं ना किसी ने काली मिट्टी बहुत दूर से बुलवा करके अपने घर में बगीचे में डालने के लिए रखी है और कोई छेड़ाला पड़ करके चले जाए कि भाई ये मिट्टी तो हम ले सकते हैं क्योंकि इसमें पूछने का कोई प्रावधान है नहीं। तो ऐसा नहीं, कोई ऐसी विशेष वस्तु में जल मिट्टी में भी कि जिसमें पूछताछ आवश्यक हो तो वहां पर भी बिना पूछे नहीं लेना। ऐसी पानी की स्थिति होती है। अब आप किसी के भी घर जाकर रेफ्रिजरेटर में से पानी निकाल के थोड़ी पी सकते, नहीं तो आप कहोगे भाई इसकी तो छूट है हमें। तो छूट है इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि आप कहीं से भी जाकर के कुछ भी कर लें।